स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर निरंतर विचार कर रहे हैं। जीवन अच्छा बनता है जब दृष्टि अच्छी होती है। जीवन अच्छा बनता है जब विचार अच्छे होते हैं। जीवन अच्छा बनता है जब हमारा आचरण अच्छा होता है। हम अपनी दृष्टि को, अपने विचारों को और अपने आचरण को कैसे अच्छा बनाएं ताकि हमारा जीवन अच्छा बन सके, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम निरंतर अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। हम उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए श्रेष्ठ विचारों के द्वारा अपने विचारों को परिष्कृत करते हैं, अच्छा बनाते हैं। यहां तक तो हमने अपनी दृष्टि और विचारों को अच्छा बनाने की प्रक्रिया तो समझ ली है। अपने आचरण को अच्छा बनाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। वो प्रयत्न किस तरह करें, तो सबसे पहले जरूरी है कि जिन्होंने अपने आचरण को अच्छा बना लिया है उनका मार्गदर्शन लें, उनके बताए अनुसार, उनकी आज्ञा से अपने आचरण में निर्मलता लाने के लिए प्रयत्न करें। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर ईमानदार हो जाता है तो ईमानदारी का भी अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। इस बात का यदि अहंकार आ जाए तो बस अच्छाई को भी नष्ट कर देता है वो अहंकार। इसलिए ऐसा अहंकार ना आ पावे कि मैं ही एक हूं जिसने अपने जीवन को इतना अच्छा बना लिया है, मेरा आचरण सर्वश्रेष्ठ है, तब जरूरी है इस बात का स्मरण कि मेरे से पहले भी और बहुत महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने अपने जीवन को, अपने आचरण को बहुत अच्छा बनाया है। इसलिए उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके अपने जीवन को, अपने आचरण को अच्छा बनाने की शुरुआत करना चाहिए। पहला कदम यह है। विनोबा की मां जब दही जमाती थी तो जामन डालती थी दही में, तो भगवान का नाम लेती थी। तो एक दिन विनोबा ने पूछ लिया कि मां ये बता, ये जो तुम दही जमाती हो तो दही जामन से जमता है या भगवान के नाम लेने से जमता है? अगर भगवान के नाम लेने मात्र से जमता है तो जामन डालने की क्या जरूरत है, और अगर जामन से जमता है तो भगवान का नाम लेने की क्या वो जमा देते हैं? ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो मां हंस पड़ी। छोटे थे विनोबा उस समय, 11-12 वर्ष के, सिर पर हाथ फेर के कहा कि बेटे दही तो जमता है जामन से, लेकिन मैं जमा रही हूं, ऐसा अहंकार ना आ जावे, इसलिए भगवान के प्रति समर्पित होकर के उनका नाम लेकर के जामन डालती हूं। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोई प्रक्रिया करते हैं, कहीं हमें उस प्रक्रिया के दौरान अहंकार ना आ जावे। उस अहंकार से बचाने के लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा है शरणागति। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पहले जिन्होंने अपने जीवन को, अपने आचरण को अच्छा बना लिया, उनकी शरण स्वीकार कर, उनकी शरण में जाकर के फिर हम उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे मार्गदर्शन लेकर के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने आचरण को अच्छा बना सकते हैं। अपने आचरण को अच्छा बनाने के लिए दूसरा कदम है कि आचरण को अच्छा बनाने की जो शास्त्रोक्त विधि है उसके अनुसार ही हम अपने जीवन में आचरण अंगीकार करें, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि हमारे जीवन में आचरण को ठीक तरह से लाने में कारण बनेगी। हम अपने मनमानी कोई भी व्रत नियम संयम इत्यादि धारण करते हैं तो उस मनमानी के कारण वे व्रत नियम और संयम हमारे कर्मों की निजरा में कारण नहीं बनते, हमारे छोटे संस्कारों को निकालने में कारण नहीं बनते, हमारी चेतना को विकसित करने में कारण नहीं बनते, उल्टे वे हमारे लिए संकलेश का कारण बन सकते हैं। शास्त्रोक्त विधि के मायने क्या है? यही कि मैं ये देखूं कि किस तरह के आचरण में मेरा और दूसरे का उपकार होता है और किस तरह का आचरण मेरे और दूसरे का अपकार करने वाला है, ये हम स्वयं नहीं जान पाते। अपकार और उपकार और सुख और दुख, इन दोनों में बहुत फर्क है। किसी चीज में जिसमें हमारा उपकार है जरूरी नहीं है कि उसमें सुख मिले, और जिस चीज में हमें सुख मिलता है जरूरी नहीं है उसमें हमारा उपकार हो। इसलिए दूसरे को सुख पहुंचाने का मतलब दूसरे का उपकार करना नहीं है। इसलिए शास्त्रोक्त विधि बताती है हमें कि किस तरह हम अपने आचरण को परिवर्तित करें जिससे हमारा कल्याण होगा, जिससे दूसरे का भी उपकार होगा। सिर्फ अपने थोड़े से इंद्रिय सुखों के लिए कई बार हमने और व्रत नियम संयम अंगीकार किए हैं, आज विदेश में हमसे भी ज्यादा लोग भले ही उसे व्रत नियम का नाम न दें, उसे वे डिसिप्लिन कहते हैं, उस डिसिप्लिन में रहते हैं, वे अपने भोजन के बारे में बहुत सचेत हैं, ऐसी कोई चीज नहीं खाएंगे जिससे कि उनका शरीर रोगग्रस्त हो जाए। अपन भी जब अपने डॉक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि फलानी चीज छोड़ दो, ये तो तुम्हारे लिए रोग बढ़ाने वाली है, तो छोड़ देते हैं। वहां दृष्टि क्या है? वहां पर व्रत नियम या कि त्याग के पीछे हमारे शरीर में रोग ना हो जावे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ये दृष्टि है। हमारी चेतना पवित्र हो जावे, हमारी जो कर्म है खोटे कर्म वे निकल जावे, ऐसी दृष्टि नहीं है। शास्त्रोक्त विधि वो है जिसमें कि हमारी दृष्टि अपने और दूसरे के चेतना के विकास की है, हमारे व्रत नियम से, हमारी ही चेतना का नहीं, आसपास के परिवेश की में भी चेतना के विकास की प्रक्रिया हो, वो है व्रत नियम इत्यादि, जिसके द्वारा अपना और दूसरे का भी स्वपर कल्याणकारी होते हैं व्रत नियम। ऐसा नहीं है कि हमने तो लय व्रत और दूसरे की जान सांसत में पड़ गई। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। हमारा तो आज व्रत है तो क्या करें, आपका व्रत है तो सारो घर भर उपवास कर ले बेटा, नहीं कर पाएगा। आपका उपवास हो सकता है लेकिन आप अपने उपवास को इतनी प्रसन्नता से और इतने सहज भाव से करें कि बाकी सब भी जो है आपके उपवास से प्रेरणा ले सकें, तब वो आपका व्रत जो आपने छोटा सा धारण किया है वो आपके और दूसरे के चेतना के विकास में कारण बनेगा। ये सावधानी व्रत नियम इत्यादि अंगीकार करते समय करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जब भी हम अपने जीवन को अनुशासित करते हैं, अपने आचरण को अच्छा बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उसका क्रम होना चाहिए। हम बिना क्रम के और ये चीज शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि होटल में बैठ के खाते हो सकता है कि रात्रि में भोजन करते हो सकता है कि बिस्किट्स और चॉकलेट्स खाते हो और कहेंगे कि हमारी तो आज हरी की रसी है, हमारी तो आज शक्कर की रसी है। ये भैया ये बात कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ती। एक तरफ अभक्ष पदार्थों का भक्षण और दूसरी तरफ भक्ष पदार्थों की रसी, ये दोनों चीजों की कुछ स्क्रीनिंग नहीं बनती है, शास्त्रोक्त विधि नहीं है ये। क्या आपने सोमवार को हरी छोड़ दी और इतवार को नमक छोड़ दिया, अकेले नमक छोड़ा है और चॉकलेट्स और बिस्किट्स भी खाए हैं और रात्रि में बना हुआ दिन में खा लिया है तब भी? हाँ, क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग है लेकिन रात में बना लिया तो दिन में खाया तब भी उतना ही दोष है। बहुत सारी ऐसी हमारे जीवन में बातें हैं, अज्ञानतावश कह लो, प्रमादवश कह लो, हमारी आसक्तिवश कह लो, हम अपने आचरण को ऊंचा तो उठाना चाहते लेकिन जो शास्त्रोक्त विधि है उसे भूल जाते हैं और अपनी मनमानी जो है व्रत नियम इत्यादि धारण करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, जिससे कि उन व्रतों से हमारी और दूसरे की चेतना जरा भी विकसित नहीं होती। जबकि व्रत तो राग द्वेष घटाने के लिए है, आसपास के परिवेश में वीतरागता का संदेश बिखेरने वाले हैं व्रत नियम इत्यादि, तब कहलाएंगे वो शास्त्रोक्त विधि से। कल परसों मैंने आपको वो जो एक खबर निकली है चॉकलेट्स के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं पर वो एकदम ध्यान आ गई, जानने की है। आश्चर्य हुआ उसको पढ़ करके कि बालों का व्यापार होता है, 5 करोड़ रुपए तक के बाल साल भर में और विदेश भेजे जाते हैं, बड़े वाले जिनकी एक बिग बनती है, और जो छोटे छोटे बाल बचे रह जाते हैं उन सबको एमिनो एसिड्स के सब्स्टिट्यूट में कन्वर्ट करके और फिर बच्चों की चॉकलेट और अन्य खाद्य सामग्री में मिक्स किया जाता है। ये खबर पढ़कर के आश्चर्य लगा। इंडिया टुडे में 21 जून की आप कहीं भी देख लेना, पढ़ लेना उसे। उसमें खुद लिखा है कि आपको जान करके आश्चर्य होगा कि छोटे बालों को इस तरह से और उपयोग में लिया जा रहा है और हम जो है ऐसी अभक्ष चीजों को भी स्वयं और अपने बच्चों को अपनी संतान को खिला रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि हाँ तो व्रत है, हम तो व्रत कर रहे हैं। तो ये व्रत करना जो है जीवन के विकास में कारण नहीं बनेगा। अभक्ष वस्तुओं का पहले त्याग होता है, उनसे पहले व्रत हुआ जाता है, फिर उसके बाद जो खाने योग्य वस्तुएं हैं उनकी सीमा की जाती है कि उनको भी एक बार दो बार खाएंगे, इतनी और इतनी मात्रा में ही खाएंगे। ये है शास्त्रोक्त विधि। और यथाशक्ति करना ये तीसरा है। जब भी कोई, अभी तो सिर्फ व्रत नियम की भूमिका बना रहे हैं भैया अपने आचरण को अच्छा करने के लिए, अभी जब आचरण को निर्मल बनाने के जो अनुव्रत हैं उनकी चर्चा करेंगे तब अलग बात है, अभी तो सिर्फ भूमिका बना ले। जिसको बुलाना है उसको बिठार भी लाख जगह तो बना ले। पांच अनुव्रतों की, महाव्रतों की चर्चा करने से पहले उनको धारण करने के लायक अपने भीतर भूमिका तो तैयार होनी चाहिए। इतना सब आज के समय में अपन ठीक ठीक अध्ययन चिंतन मनन भी नहीं करते। जिसने जो कहा सो उसके अनुसार उनने की हो, जो बीमार आ जाए थी सो उनसे जो नियम ले लो, वो बे माता जी आई थी सो उनसे जो नियम, बड़ा ही मानी हूं आप हाँ, और बे पंडित जी आए थे सो उनसे जो नियम ले लो, और महाराज आप आए हो आप दे दो कौन नियम। हे भैया ऐसे कछू घबट रहेगा सो अपने लिए जाओ धरत जाओ, ऐसा नहीं है। व्रत नियम इत्यादि जैसे आचार्य भगवंतों ने कहे हैं वैसे ही धारण करना चाहिए। अपन को व्रतों की संख्या बढ़ाने की होड़ नहीं होनी चाहिए कि मैंने इतने लिए, एक भी लिया है पर उसे मुझे किस तरह पालन करना चाहिए जिससे मेरा आत्म विकास हो, ये होना चाहिए। एक क्योंकि कोई भी नियम छोटा बड़ा नहीं होता। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से जब किसी ने कहा कि महाराज कौन छोटो सो नियम तो दे दो, तो हंसने लगे कि भैया नियम तो सब बड़े ही होते हैं क्योंकि सब तीर्थंकर भगवान ने ही बताए हैं, सब बड़े हैं, छोटे बड़े कोई नहीं, नियम सब बड़े हैं, सब आत्म कल्याण में कारण है। ये बात अलग है कि हमारी जैसी भूमिका है उसके अनुसार हम पालन करते हैं, बस इतना ही है, बड़े छोटे थोड़ों में। ये तो सब निर्जरा में कारण है, कोई कमती निर्जरा में कारण है, कोई ज्यादा निर्जरा में कारण है, ऐसा भी नहीं है। हमारी भूमिका के अनुसार उसकी निर्जरा होगी, जितनी हमारी उस व्रत नियम के पालन करने में विशुद्धि बढ़ेगी उतनी निर्जरा होगी, उद्देश्य वो है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अब महाराजा में सुन से मैं लियो नियम लियो सबसे लियो, मनो विचार तो करो कि जो हमने नियम लिए हैं हमें तो आपको के लिए जो महाराज ने मैंने सी बता दी, हमने तो इतनी पहले से ले लाई थी, हम तो मन बनाए थे कि महाराज से और ले लें, अब जो और एक मुश्किल हो गई जो हमने गए वे और छोड़ने पर, छोड़ने का नहीं कह रहे, वो जो सबसे लिए हैं उसका क्रम तो देख लो। मांगने से पहले कि हे भगवान मुझे कोई नियम दे, पहले ये तो देख लो कि हम उनसे रात के भोजन के त्याग का नियम ले रहे हैं तो मैंने मद्य मधु मांस का त्याग कर दिया कि नहीं किया, तब तो रात्रि भोजन के लायक मेरी योग्यता होगी, इतना तो विचार कर ले। जिसने अभी मद्य मधु मांस का त्याग नहीं किया है वो रात्रि भोजन का त्याग अकेले करने से क्या होगा, ये क्रम। जिसने होटल का नहीं छोड़ा वो रात्रि भोजन का त्याग करने अकेले से क्या होगा, बड़ा कठिन लगेगा आपको हाँ, पर शास्त्रोक्त विधि यही है कि जिसमें ज्यादा हिंसा है उसे पहले छोड़ेंगे। मिनिमाइजेशन ऑफ वायलेंस इज नॉन वायलेंस। हम पहले देखें कि हिंसा को कैसे कम किया जाए, झूठ को कैसे कम किया जाए, तब जाकर के हम व्रत दे पाएंगे उसका। अगर हमारे भीतर ये समझ है कि इसमें ज्यादा दोष है इसे पहले छोड़ो, जैसे अपन कहते कि तुम्हें जौन सी चीज ज्यादा प्रिय हो सुबह पहले छोड़ो, प्रिय ज्यादा हो मतलब जिसमें आसक्ति ज्यादा हो सुबह छोड़ो, तो आसक्ति छुड़वाने के लिए चीज छुड़वा रहे हैं। इसी तरह से हमारे भीतर जो हिंसा का भाव है उसे घटाने के लिए हमें ये छोटे छोटे व्रत नियम इत्यादि दिए जा रहे हैं। ये विचार हमारे भीतर होना चाहिए और फिर कहते हैं कि यथाशक्ति देना चाहिए, जितनी अपनी शक्ति हो, क्योंकि शक्ति से कमती व्रत लेना भी निद्रा का कारण नहीं बनेगा और शक्ति से ज्यादा लोगे तो कर्म बंध का कारण बनेगा, क्योंकि शक्ति से ज्यादा लेने पर संक्लेश होगा, विशुद्धि न बढ़ेगी। तो व्रत तो विशुद्धि बढ़ाने के लिए होते हैं, इसलिए ये सावधानी भी हमें जब भी हम व्रत नियम इत्यादि ग्रहण करते हैं अपने आचरण को अच्छा बनाने के लिए, अपनी चेतना को निर्मल बनाने के लिए, जब भी हम कोई व्रत नियम लेते हैं तो ये बातें हम स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें। और आखिरी चीज है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं जो भी ग्रहण कर रहा हूं मैं अपनी स्वेच्छा से ग्रहण कर रहा हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं इसे कर पाऊंगा, मेरा अपने ऊपर विश्वास नहीं है। वे आए थे सोन ने कई के लिए लो नाम तुमसे आन ले ले हैं, सो सबके सामने फजीती न हो जाए, इसे हमने कह दी थी कि हम ले लें, ये नहीं करना। लेना तो पूरे अपने आत्मविश्वास के साथ लेना। मुनि महाराज और त्यागी व्रति तो निमित्त मात्र हैं, वे तो हमें प्रेरित करते हैं कि भैया कैसे भी किसी बहाने से अपने कल्याण के लिए आप ले तो लो। तो जैसे ही वो हमें प्रेरणा दे ले लो, तो हमारे भीतर भी आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए। ठीक तो कह रहे हैं, इनको हमें का फायदा हो रहा है, हमें छुड़वा रहे से इनको का फायदा, हमारे फायदा के लाने कह रहे हैं कि आप छोड़ दो, तो फिर हमारे भीतर भी ये साहस उत्पन्न होना चाहिए कि ठीक है महाराज आप आशीर्वाद दो, तो हमारे भीतर साहस आवे और हम इस व्रत को ठीक ठीक मजबूरी में नहीं, हम अपनी स्वेच्छा से पूरे आत्मविश्वास के साथ उस नियम को ले। फिर देखिएगा कि कैसे वो नियम हमारे जीवन को अनुशासित नहीं करता, हमारे जीवन को निर्मल नहीं बनाता, अवश्य बनाए। इस तरह यदि हम अपने जीवन में अपने आचरण को अच्छा बनाने की कोई प्रक्रिया शुरू करते हैं तो श्री गुरु की आज्ञा से, शास्त्रोक्त विधि से, पूरे आत्मविश्वास से और अपनी शक्ति को देख करके यथाशक्ति, इन चार बातों का ध्यान रख के ही हम अपने आचरण को अच्छा बनाने के लिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। यह जो व्रत नियम की प्रक्रिया है क्यों ली जाती भैया, किसका आचरण अच्छा माना जाता, विचार करो। अब आगे तो कहते जो जितना स्वावलंबी है, जो जितना कमती पराधीन है, उसका आचरण सबसे श्रेष्ठ है। स्वावलंबन की प्रक्रिया है, सही आचरण उसका है जिसकी की जिसके जीवन में जितनी कम पराधीनता है। देखो जब अपन स्वतंत्र नहीं भय थे तो कैसा दुख महसूस करते थे कि हम तो परतंत्र देश में रहते, आज स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, तो आनंद अनुभव करते हैं। कहते इसी तरह से व्रत नियम इत्यादि कहे के लिए है ताकि मैं अपने इंद्रियों और मन की पराधीनता से बच सकूं। सबसे बड़ी पराधीनता है इस इंद्रियों और मन की पराधीनता से, तो सारा संसार संसार के दुख भोग रहा है और कुछ नहीं है। अगर देखा जाए मेरी अपनी आसक्ति और मेरा अपना अज्ञान जो मुझे पांच इंद्रियों और मन में, मन के विषयों में आसक्त करता है, वही तो मेरे संसार के दुखों का कारण है। ऐसा मेरे भीतर जब तक विचार नहीं आएगा तब तक मैं इस पराधीनता से नहीं बच पाऊंगा और स्वाधीन जीवन नहीं जी पाऊंगा। तो स्वाधीन जीवन जीने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, कहते मन वाणी और शरीर का सदुपयोग करना सीख लो, हो जाओगे स्वाधीन। तो कहा हमारे दुरुपयोग कर, कहते करते ही हो। हाँ ऐसा लिखा उसने, हम अपने जो मिले हुए मन वाणी और शरीर है इनका सदुपयोग करने लगे तो देखें कितना स्वावलंबन आता है और हम पराधीनता से बच जाते हैं। हमारे मन में खोटे विचार आते हैं भी हम पराधीन करते हैं, तो क्या करें, कितने श्रेष्ठ विचार आए मन में तो स्वाधीनता बनी रहेगी। कितना आसान तरीका है, हमारी वाणी में दूसरे के लिए कठोर कटु और असभ्य वचन भी हमें पराधीन बनाते हैं। कहते इसको सुधारो, शब्द वचन बोलो, मृदु वचन बोलो, मधुर वचन बोलो, जिससे कि तुम स्वाधीन हो। ऐसी वचन की स्वाधीनता। और शरीर कहते, शरीर से अगर तुम अपने पांचों इंद्रियों के पोषण करने वाली चीजें ही ग्रहण करते रहोगे तो पराधीन हो गए। एक दिन कोनो चीज नहीं मिली सो जीवन जीना मुश्किल जान पड़ता है। हमें किसी ने बताया था कि एक कितनी देर के लिए अमेरिका में बिजली चली गई थी तो कई लोगों ने सुसाइड कर लिया था। अब बताओ ऐसे कैसे जीनी, हम नहीं जी सकते बिना बिजली के, नहीं जी सकते। अब अभी कई जनों ऐसा ही है कि बिजली न हो तो पंखा न चले, कूलर न चले, तो उनका जीना बेहाल हो जाए फिर, क्यों इतनी पराधीनता। तो कहते अपने शरीर को इतना पराधीन न बनाओ, इंद्रियों के अधीन न बनाओ, जिससे कि जीवन मुश्किल हो जाए जीना। तो शरीर की स्वाधीनता क्या है? कहते तपस्या करना शरीर की स्वाधीनता, कष्टों को सहन करना, ये जो है स्वाधीन बनना है शरीर की अपेक्षा से। तो जितना अधिक हम अपने कष्टों में सहनशील होंगे, जितना कष्ट सहिष्णु होंगे, उतने हम स्वावलंबी होंगे। इस तरह हम अपने चाहे तो मन, वाणी और शरीर, इन तीनों के माध्यम से अपने जीवन को स्वावलंबी बना सकते हैं। और स्वावलंबन जब आएगा तभी जाकर के सारे व्रत आएंगे। पराधीन व्यक्ति व्रतों का पालन भी कर ले तो अपनी उस पराधीनता का ही पोषण करता है। विषय भोग की लालसा वाला व्यक्ति व्रत नियम भी उसी लालसा से करता है कि व्रत नियम करने से ये सब चीजें और ज्यादा मिलेंगी। भैया सावधानी रखना इस चीज की। जैसे अपन घर में नहीं कहने लगत कि का भैया आज उपवास रख लो है, अब ध्यान तो बढ़िया रबड़ी मलाई मिल ले है, मताई बना ले है। कहती कि नहीं, जी चिड़ाने को कहती अपन, लेकिन ये सच्ची नहीं हो जाए। जी कहीं ना कहीं से चिड़ाने के लिए बात आई होगी कि हमारे मन में ऐसी आसक्ति न हो जावे कि बहुत अच्छा है एक उपास करे से दूसरे दिन बढ़िया रबड़ी मलाई और हलवा वगैरह मिले। हमारे साथ में एक व्यक्ति जाते हार में तो भी कह रहे थे कि हम तो देखते रहे कि उस दिन उपवास के बाद कुछ तो परिवर्तन करोगे आप अपने हार में, एक चीज तो कछु ले हो आपने तो कछु नहीं लाओ। हाँ उन्होंने मार्क कर लिया इस चीज को कि हम सोच रहे थे कि उपवास के बाद तो एक आध कोई चीज आप परिवर्तन करोगे, लेकिन आपने नहीं किया परिवर्तन। इससे हमें क्या प्रेरणा मिली? यही कि मैंने उपवास इसके लिए थोड़ा किया था कि कल के दिन रसगुल्ला खाने मिलेंगे कि हलवा खाने मिलेगा कि मुझे और अधिक भोग विलास की सामग्री मिलेगी, इसलिए आज छोड़ देता हूं। थोड़ा छोड़ने से अगर ज्यादा मिलता है तो मजा है। ऐसा नहीं करना। हम तो अपने कर्मों की निद्रा के लिए कर रहे हैं ऐसा विचार करके, और कोई भी हम शरीर से और किसी चीज का भी त्याग करते हैं, अपने ग्रहण करने में उसे नहीं लेते, तो उसके पीछे ये उद्देश्य होना चाहिए। हमारी वाहवाही होगी, हमारी जय जयकार होगी कि भैया ने उपवास करे हैं दस्तों, ऐसे यश ख्याति की दृष्टि से भी नहीं करना और ना ही भावी भोगों की लालसा से करना, ना वर्तमान के यश ख्याति के लिए करना। इतनी सब बातें अगर अपन ध्यान में रखते हैं तो ही जो है ये हमारा जो जीवन है, हमारा आचरण है, वो निर्मल बनेगा। एक छोटी सी घटना आपको सुनाएं कि भीतर जब तक अपने परिवर्तन न कर हो, जब तक बाहर से किया गया परिवर्तन ज्यादा उपकारी नहीं होगा। बात तो इतनी है ईमानदारी से। सो एक घटना सुना देते सो सब समझ में आ जाएगा। वैसे तो अभी भी समझ में तो आ रही हुई है, ऐसे नहीं है, अब तो बहुत होशियार हो गए महीना भर हो गए तो सब समझ में आने लगी कि काय कह रहे महाराज जी है? एक एक्सीडेंट हो गया रेलगाड़ी का। अब एक्सीडेंट हो गया तो इंक्वायरी हुई कि भैया का बात से एक्सीडेंट हुआ, लाइनमैन की गड़बड़ी से हुआ, या कि वो जो झंडी दिखाने वाला है, बत्ती दिखाने वाला है, उसकी गड़बड़ी से हुआ। तो सब इंक्वायरी हुई, सब सिर पूछताछ हुई। तो वो जो बत्ती दिखाने वाला था, झंडी दिखाने वाला था, झंडी दिन में दिखाई जाती, रात में वो स्टेशन पे खड़ा हुआ बत्ती दिखाता है, उसको बुलाया गया। अब सब जने स्टेशन मास्टर वगैरह भी सब
चिंतित हैं कि अब जो का पता का बताऊ थे। तो जाकर के वकील ने पूछा कि क्यों भाई, जब ट्रेन आई तो उसके आने की आवाज तुम्हें सुनाई पड़ी? कहते हां साहब सुनाई पड़ी। फिर जब ट्रेन सिग्नल उसको मिल गया, उससे पार हुई, कहते वो भी हमें याद है। मतलब सो तो नहीं रहे थे या परीक्षा हो गई। कहते फिर जब ट्रेन आई और क्रॉसिंग पर, तो तुमने बत्ती दिखाई कि नहीं? कहले साहब दिखाई, बत्ती भी दिखाई। तो बड़ी मुश्किल हो गई, दो दो तीन तीन बार घुमा फिरा करके। वकील की जैसी आदत होती है सुबह, ऐसा उसने घुमा फिरा कहीं से कछु मिल जाए। उसने जितनी बार पूछा कि का भैया तुमने बत्ती हिलाई थी कि नहीं, उसने कहा साहब बत्ती हिलाई थी, आप जितने बार पूछो मैं आपको एक ही जवाब, मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूंगा, बत्ती मैंने हिलाई थी। अब बत्ती और अब क्या कर सकती, गवाही हो गई, अब और तो कोई है ही नहीं, खुद वो कह रहा है। तो सब मुक्त हो गए। अब स्टेशन मास्टर ने बुलाया कि यार तुम तो बहुत होशियार निकली, हमारे तो बहुत डरा रहे थे कि गड़बड़ ना कर दो तुम। कहती हमारी इसमें क्या होशियारी, वकील साहब ने जैसी पूछी हमने उनसे जवाब दे दो। अगर कम उनने जा पूछी होती कि बत्ती जली थी कि बुझी तो दिक्कत होती, अभी तो कह रहे थे कि हिलाई थी कि नहीं, सुनने हिलाई थी बत्ती तो हिलाई थी, अब जली थी कि नहीं बुझी थी, अब जा नहीं कैसे आ गया समझ में आपके, व्रत नियम तो करे थे, भीतर बत्ती जली थी कि नहीं जाने पूछो, हमने करे थे। तो एक्सीडेंट हो गया, देख लो कि एक्सीडेंट ना हो, अपना जीवन जो है बड़ी मुश्किल से मिला है, और अपन अपने अंतरंग के परिणामों को निर्मल कराने के लिए ही ये चारित्रंगीकार करते हैं। अपना जीवन तभी अच्छा बनेगा जब वही आचरण के साथ साथ हमारे अंतरंग में भी निर्मलता आती जाए। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।